एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट नोज़िक की, एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने 20वीं सदी में खासकर राजनीतिक सोच पर बहुत गहरा असर डाला।
हाँ बिल्कुल, नोज़िक जिनका जन्म 1938 में न्यूयॉर्क में हुआ, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता, न्याय और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आप कह सकते हैं एक तरह से बहस को नया मोड़ दिया।
और उन्होंने उस समय के जो स्थापित विचार थे, खासकर उदारवादी और समतावादी, उनको सीधी चुनौती दी।
सही कहा, खास तौर पर अपने ही हार्वर्ड के साथी जॉन रॉल्स, जिनके विचार उस समय बहुत प्रभावशाली थे। नोज़िक ने एक बिल्कुल अलग, मतलब स्वतंत्रता केंद्रित नजरिया पेश किया।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी उनके मुख्य विचारों को समझना, खासकर उनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया।
हाँ, और उनका जो न्याय का सिद्धांत है, जिसे हकदारी का सिद्धांत कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे।
ठीक है, तो शुरू करने से पहले थोड़ा उस समय को समझ लेते हैं जिसमें नोज़िक सोच रहे थे।
जी
ये 20वीं सदी का मध्य था, है ना?
जी
दुनिया में बड़ी उथल पुथल का दौर था, शीत युद्ध चल रहा था, अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन हो रहे थे, वियतनाम युद्ध, मतलब विचारों के स्तर पर भी काफी टकराव था।
और अकादमिक जगत में कैसा माहौल था?
वहां जॉन रॉल्स की किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में आई थी, उसका बहुत दबदबा था। वो समानता और न्याय पर केंद्रित थी। दर्शन में उस समय कठोर विश्लेषणात्मक तर्क पर बहुत जोर था, लेकिन साथ ही 60 और 70 के दशक में आप देखें तो सत्ता पर सवाल उठाने का, व्यक्तिगत अधिकारों पर नए सिरे से सोचने का एक माहौल भी बन रहा था।
तो नोज़िक की आवाज इसी माहौल में उठी, पर एक अलग धुन के साथ।
बिल्कुल, एकदम अलग।
उन पर किन लोगों का प्रभाव था, मतलब क्या वो किसी दार्शनिक परंपरा से जुड़े थे? हाँ, कई गहरे प्रभाव थे, जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए जॉन लॉक, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से बात शुरू करते हैं।
अच्छा,
फिर अर्थशास्त्र में देखें तो एफ ए हायेक और मिल्टन फ्रीडमैन, ये मुक्त बाजार के बड़े समर्थक थे।
और नैतिकता के स्तर पर
वहां इमानुएल कांट का बहुत असर था, खासकर कांट का ये विचार कि हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है, उसे किसी और लक्ष्य का साधन नहीं बनाना चाहिए। ये सब नोज़िक के विचारों की नींव में आपको मिलेगा।
और समकालीनों में जाहिर है जॉन रॉल्स का नाम सबसे पहले आता है।
हाँ, वो हार्वर्ड में उनके साथी भी थे और सबसे बड़े वैचारिक प्रतिद्वंद्वी भी।
ये भी दिलचस्प है। अब जरा उनके शुरुआती जीवन की बात करें। ब्रुकलिन में जन्म, अप्रवासी यहूदी परिवार, सुना है पढ़ानी में शुरू से ही तेज थे।
जी हाँ बिल्कुल, कोलंबिया से बीए किया, फिर प्रिंसटन से पीएचडी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात शायद ये है कि अपनी जवानी में वो समाजवादी विचारों के काफी करीब थे।
क्या बात कर रहे हैं, समाजवादी?
हाँ, वो सोशलिस्ट पार्टी की युवा शाखा के सदस्य तक रहे थे।
समाजवादी से फिर दुनिया के सबसे जाने माने स्वतंत्रतावादी दार्शनिकों में से एक बनना, ये तो जबरदस्त बदलाव है। ये हुआ कैसे?
यही उनकी बौद्धिक यात्रा का, कह सकते हैं, सबसे नाटकीय पहलू है। हुआ ये कि जब उन्होंने ऑस्ट्रियन स्कूल के अर्थशास्त्रियों को पढ़ा, जैसे लुडविग वॉन मीज़ेस को, और सरकारी हस्तक्षेप के परिणामों पर सोचना शुरू किया, तो उनका नज़रिया
पूरी तरह बदल गया।
बिल्कुल, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमित सरकार के बहुत मजबूत पैरोकार बन गए।
ये दिखाता है कि वो तर्क के पीछे जाने को तैयार थे, चाहे वो उनके पुराने विश्वासों से बिल्कुल उलट ही क्यों ना हो।
कमाल की बौद्धिक ईमानदारी। और फिर उनका एकेडमिक करियर हार्वर्ड में परवान चढ़ा।
सही, 1969 में वो हार्वर्ड के दर्शनशास्त्र विभाग से जुड़े और फिर अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। वहां वो राल्स, क्विन, पुटनम जैसे बड़े दार्शनिकों के साथ थे।
और वहीं उन्हें प्रतिष्ठित आर्थर किंग्सले पोर्टर प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी का पद भी मिला।
और इसी दौरान 1974 में वो किताब आई जिसने सब कुछ बदल दिया, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया।
जी हाँ, ये किताब एक धमाके की तरह थी, आते ही क्लासिक बन गई, नेशनल बुक अवार्ड जीता इसने।
और नोज़िक एकदम से चर्चा के केंद्र में आ गए।
बिल्कुल, वो स्वतंत्रतावाद यानी लिबर्टेरियनिज्म के सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत दार्शनिक रक्षक के तौर पर स्थापित हो गए। और ये किताब सीधे सीधे रॉल्स के न्याय सिद्धांत को चुनौती दे रही थी।
चलिए तो अब सीधे नोज़िक के मुख्य विचारों पर ही आते हैं। ये जो किताब है, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, इसका मूल तर्क क्या था? ऐसा क्या था इसमें जिसने इतनी हलचल मचाई?
देखिए, इसका जो केंद्रीय विचार था वो था न्यूनतम राज्य यानी मिनिमल स्टेट का बचाव करना।
न्यूनतम राज्य मतलब
एक ऐसी सरकार जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना हो। किससे? बल प्रयोग से, धोखाधड़ी से, चोरी से, बस।
अच्छा, यानी सिर्फ एक तरह से सुरक्षा देना।
हाँ, इसे नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहा गया, जैसे रात का चौकीदार। नौजिक का तर्क था कि अगर सरकार इससे ज्यादा कुछ भी करती है, जैसे संपत्ति का पुनर्वितरण या लोगों की जिंदगियों में ज्यादा नियम कानून बनाना, तो वो असल में लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है।
ये तो उस समय की जो मुख्य धारा की सोच थी, खासकर रॉल्स वाली, उससे बिल्कुल उल्टा था।
बिल्कुल, रॉल्स कह रहे थे कि न्याय के लिए सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, असमानता कम करनी होगी। नॉजिक कह रहे थे नहीं, सरकार का काम सिर्फ लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना है, किसी खास सामाजिक पैटर्न या नतीजे को लागू करना नहीं।
फिर उनकी एक और बड़ी किताब आई 1981 में, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस। इसका दायरा तो काफी फैला हुआ लगता है।
हाँ, इसमें उन्होंने दर्शन के कई अलग अलग क्षेत्रों पर लिखा, जैसे ज्ञान क्या है, व्यक्तिगत पहचान क्या है, क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, जीवन का अर्थ क्या है। और यहाँ उनकी शैली भी थोड़ी अलग थी, वो टकराव वाली नहीं बल्कि जैसे मिलकर दार्शनिक पहेलियां सुलझाने की कोशिश कर रहे हों वैसी थी।
और फिर आई द एग्जामिन्ड लाइफ 1989, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादा व्यक्तिगत थी और आम पाठकों के लिए भी आसान थी।
सही, इसमें उन्होंने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े दार्शनिक सवालों पर बात की, प्यार, खुशी, रचनात्मकता, मौत। और दिलचस्प बात यह है कि इसी किताब में उन्होंने अपने पहले के जो कट्टर स्वतंत्रतावादी विचार थे उनसे थोड़ी दूरी बनाई।
दूरी बनाई मतलब?
उन्होंने माना कि उनका जो शुरुआती सिद्धांत था वो शायद समुदाय के महत्व और लोगों के आपसी जुड़ाव की जरूरत को नजरअंदाज करता है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस मायने में वो सिद्धांत गंभीर रूप से अपर्याप्त था, सीरियसली इनएडिक्वेट था।
ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या इसका मतलब ये निकाला गया कि उन्होंने स्वतंत्रतावाद छोड़ दिया?
पूरी तरह छोड़ा तेरा तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये उनके विचारों में एक महत्वपूर्ण बदलाव जरूर दिखाता है, और ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी भी दिखाता है कि वो खुद अपने विचारों पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटे। खैर,
हाँ, अब उनके उस सबसे प्रसिद्ध योगदान पर आते हैं, हकदारी का सिद्धांत यानी एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये क्या बला है?
ये नॉजिक का आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक था, और रॉल्स के विचारों का सीधा जवाब भी।
अच्छा,
कैसे? देखिए, हकदारी सिद्धांत ये कहता है कि समाज में संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्ण है या नहीं, ये इस बात से तय नहीं होता कि आखिर में किसके पास कितना है। मतलब अंतिम नतीजा कैसा दिखता है ये जरूरी नहीं।
तो फिर क्या जरूरी है?
जरूरी है प्रक्रिया, वो संपत्ति हासिल कैसे की गई। इसके दो मुख्य नियम हैं।
बताइए।
पहला, अधिग्रहण में न्याय, जस्टिस इन एक्विजिशन। क्या किसी चीज को जब वो पहली बार किसी की संपत्ति बनी तो उसे सही तरीके से हासिल किया गया था, बिना किसी और के अधिकार छीने? और दूसरा हस्तांतरण में न्याय, जस्टिस इन ट्रांसफर। क्या उस चीज का जो भी लेन देन हुआ वो लोगों की मर्जी से हुआ, बिना किसी धोखे या जबरदस्ती के?
अच्छा, यानी अगर कोई चीज शुरू में सही तरीके से ली गई और फिर उसका लेन देन भी सही तरीके से हुआ, तो नतीजा चाहे कितना भी असमान क्यों ना हो,
नॉजिक के हिसाब से वो न्यायपूर्ण है।
ये तो रॉल्स के पैटर्न वाले न्याय से बिल्कुल अलग है।
यस,
रॉल्स तो एक खास तरह के मतलब बराबरी वाले नतीजे पर जोर दे रहे थे।
एकदम उल्टा है। और इसी बात को समझाने के लिए नॉजिक ने वो मशहूर उदाहरण दिया था विल चैम्बरलेन का।
हाँ हाँ, वो बास्केटबॉल खिलाड़ी वाला, वो क्या था जरा विस्तार से बताइए।
हाँ, वो तर्क बहुत मजेदार और प्रभावशाली है। सोचिए, मान लीजिए एक समाज है जहां संपत्ति का बंटवारा एकदम न्यायपूर्ण है, जैसा भी रॉल्स या कोई और चाहे।
ठीक।
अब इस समाज में एक बहुत मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी है, विल चैम्बरलेन। लाखों लोग उसे खेलते हुए देखना चाहते हैं और अपनी मर्जी से उसके खेल के लिए टिकट खरीदते हैं। मान लीजिए हर कोई 25 सेंट अतिरिक्त देता है जो सीधा चैम्बरलेन की जेब में जाता है।
अपनी मर्जी से?
बिल्कुल अपनी मर्जी से।
हाँ।
अब नतीजा क्या होगा?
चैम्बरलेन बहुत अमीर हो जाएगा।
हाँ, और समाज में संपत्ति का वो जो शुरू का न्यायपूर्ण पैटर्न था वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा।
तो नॉजिक का पॉइंट क्या था इससे?
उनका पॉइंट ये था कि लोगों की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से अपना पैसा खर्च करने की स्वतंत्रता, अनिवार्य रूप से किसी भी पहले से तयशुदा पैटर्न को, किसी भी डिजाइन को बिगाड़ देगी।
यानी स्वतंत्रता और पैटर्न एक साथ नहीं चल सकते?
नॉजिक के हिसाब से नहीं। अगर आप उस शुरुआती पैटर्न को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको लगातार लोगों की पसंद में दखल देना पड़ेगा। आपको चैम्बरलिन को ज्यादा कमाने से रोकना होगा या उससे टैक्स लेकर दूसरों में बांटना होगा।
और ये नॉजिक के लिए स्वतंत्रता का हनन था?
बिल्कुल, उनका निचोड़ था। या तो आप स्वतंत्रता चुन लीजिए या पैटर्न, दोनों एक साथ बिना जबरदस्ती के नहीं चल सकते।
वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, उन्होंने अधिकारों को साइड कंस्ट्रेंट्स के रूप में भी देखा। ये साइड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं?
इसे ऐसे समझिए कि हमारे अधिकार, व्यक्ति के अधिकार, वो कुछ नैतिक सीमाएं हैं। कांट से ये विचार लेते हुए नॉजिक ने कहा कि ये सीमाएं इतनी मजबूत है कि कोई और, यहां तक कि पूरा समाज या सरकार भी, किसी बड़े भले के नाम पर इन्हें लांग नहीं सकता।
मतलब व्यक्ति के अधिकार सर्वोपरि हैं, उन्हें किसी सामूहिक लक्ष्य के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता।
एग्जैक्टली, ये साइट कंस्ट्रेंट्स है, ये दूसरों के एक्शन पर रोक लगाते हैं। व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं।
और इसी सोच से वो न्यूनतम राज्य वाले निष्कर्ष पर पहुंचे।
हाँ, क्योंकि उनके अनुसार केवल न्यूनतम राज्य ही एक ऐसा राज्य है जो इन साइड कंस्ट्रेंट्स का, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि ऐसा राज्य स्वाभाविक रूप से बिना किसी के अधिकार छीने विकसित हो सकता है।
लेकिन जैसे ही राज्य इससे ज्यादा करने लगता है,
वो इन नैतिक सीमाओं को पार कर जाता है और अधिकारों का उल्लंघन शुरू हो जाता है।
उनके एक और मशहूर विचार प्रयोग का जिक्र आता है, अनुभव मशीन, यानी एक्सपीरियंस मशीन।
हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। नॉजिक पूछते हैं, कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन है जिसमें आप प्लग इन हो सकते हैं और वो मशीन आपको हमेशा 2400 घंटे सिर्फ सुखद अनुभव देगी। जो भी आप चाहें, सफलता का एहसास, प्यार का एहसास, मजे का एहसास, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा महसूस होगा।
वाह।
सवाल ये है, क्या आप अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उस मशीन से जुड़े रहकर बिताना चाहेंगे?
शायद नहीं।
नॉजिक का भी यही मानना था कि ज्यादातर लोग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करना चाहते,
हम असल में कुछ करना चाहते हैं।
हाँ,
हम असलियत से जुड़ना चाहते हैं, वास्तविक काम करना चाहते हैं, असली रिश्ते बनाना चाहते हैं। हम सिर्फ सुखद मानसिक अवस्थाएं नहीं चाहते, हम वास्तविक जीवन चाहते हैं, उसकी चुनौतियों और उपलब्धियों के साथ। ये तर्क दिखाता है कि हमारे लिए मूल्य केवल अंदरूनी एहसास नहीं बल्कि बाहरी वास्तविकता भी है।
ये बहुत गहरा पॉइंट है।
अच्छा, अब जरा रॉल्स और नॉजिक की उस टक्कर पर वापस आते हैं। हार्वर्ड में साथ पढ़ाते थे लेकिन विचार बिल्कुल विपरीत।
हाँ, वैचारिक स्तर पर ये 20वीं सदी के राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी बहसों में से एक है, रॉल्स नॉजिक डिबेट।
एक तरफ रॉल्स का उदार समतावाद,
जो समाज के सबसे वंचित तबके के फायदे को प्राथमिकता देता है और मानता है कि न्याय के लिए संपत्ति का पुनर्वितरण जरूरी हो सकता है।
और दूसरी तरफ नॉजिक का स्वतंत्रतावाद,
जो व्यक्तिगत अधिकारों, संपत्ति के अधिकारों और मुक्त बाजार पर जोर देता है और पुनर्वितरण को अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन मानता है। ये दो बिल्कुल अलग विजन थे कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा दिखना चाहिए।
लेकिन आपने बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हार्वर्ड में सम्मानजनक सहयोगी थे। उनकी बहस पूरी तरह बौद्धिक थी, विचारों के स्तर पर।
आज के समय में नॉजिक कितने प्रासंगिक हैं? उनकी विरासत क्या है?
उनकी विरासत, देखिए, काफी मजबूत भी है और विवादास्पद भी। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया ने दुनिया भर में जो स्वतंत्रतावादी आंदोलन है उनको एक तरह से बौद्धिक रीढ़ दी। खासकर रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर के दौर में मुक्त बाजार के समर्थकों ने उनके विचारों को काफी अपनाया। थिंक टैंक्स ने उन्हें हाथों हाथ लिया।
और अकादमिक दुनिया में?
अकादमिक दर्शन के अंदर उन्होंने स्वतंत्रतावाद को एक गंभीर बौद्धिक रूप से सम्मानजनक स्थिति दिलाई। टैक्स कैसे लगे, संपत्ति के अधिकार क्या हो, सरकार को कितनी मदद करनी चाहिए, इन सब बहसों पर नॉजिक के तर्क आज भी गूंजते हैं।
तो उनका असर सिर्फ राजनीति या अर्थशास्त्र तक ही नहीं रहा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका काम हमें आज भी उन बुनियादी सवालों से जूझने पर मजबूर करता है कि सरकार का व्यक्ति पर कितना अधिकार है, स्वतंत्रता की सीमाएं कहाँ हैं, न्याय असल में है क्या। आप भले ही उनके जवाबों से सहमत न हो, पर उनके सवाल और उनके तर्क आपको सोचने पर विवश करते हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं, जैसे वो पहली लाइन उनकी किताब की, व्यक्तियों के अधिकार होते हैं और ऐसी चीजें हैं जो कोई व्यक्ति या समूह उनके साथ उनके अधिकारों को उल्लंघन किए बिना नहीं कर सकता।
हाँ, ये उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है, व्यक्ति और उसके अधिकार सबसे पहले।
और ये वाला, न्यूनतम राज्य सबसे व्यापक राज्य है जिसे उचित ठहराया जा सकता है, कोई भी अधिक व्यापक राज्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
ये उनके राजनीतिक सिद्धांत का सार है, सरकार की शक्ति पर कड़ी नैतिक सीमाएं होनी चाहिए।
और वो जो सबसे ज्यादा विवादित रहा, श्रम से होने वाली आय पर कर लगाना जबरदस्त श्रम के बराबर है।
हाँ, ये बहुत ही उत्तेजक प्रोवोकेटिव तर्क था। उनका कहना था कि जब सरकार आपकी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेती है, तो वो असल में आपके समय का, आपकी मेहनत का एक हिस्सा ले रही है और आपको जबरदस्ती दूसरों के लिए काम करवा रही है। ये पुनर्वितरण के खिलाफ उनका सबसे तीखा तर्क था।
जाहिर है, इतने तीखे विचारों की आलोचना भी जबरदस्त हुई होगी।
अरे बिल्कुल, खासकर जो समतावादी विचारक थे जैसे जीए कोहिन, उन्होंने कहा कि नॉजिक का सिद्धांत तो भयानक असमानताओं को सही ठहरा देता है।
और वो इस बात को नजरअंदाज करता है कि सफलता में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि किस्मत और सामाजिक परिस्थितियों का भी बड़ा हाथ होता है।
सही कहा। आलोचकों ने ये भी कहा कि उनका जो अधिग्रहण में न्याय वाला सिद्धांत है वो बड़ा कमजोर है। मतलब ये पता लगाना कि इतिहास में सबसे पहले संपत्ति कैसे हासिल की गई थी, ये तो लगभग नामुमकिन है।
और जो ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं, जैसे गुलामी से कमाई दौलत या उपनिवेशवाद से, उसका क्या?
ये उनके सिद्धांत की एक बहुत बड़ी दुखती रग है। नॉजिक खुद मानते थे कि ऐसे पुराने अन्यायों का सुधार, रेक्टिफिकेशन होना चाहिए।
लेकिन उसका तरीका क्या हो?
यही तो मुश्किल है। आलोचक कहते हैं कि अगर आप इतिहास के सारे अन्यायों का हिसाब बराबर करने निकलें, तो आपको शायद इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति का पुनर्वितरण करना पड़ेगा कि नॉजिक की अपनी जो स्वतंत्रतावादी व्यवस्था है वो ही खतरे में पड़ जाएगी।
और न्यूनतम राज्य पर ये आरोप भी लगा कि वो समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों का क्या करेगा।
हाँ, ये एक बहुत गंभीर नैतिक सवाल उठाया गया। अगर सरकार सिर्फ सुरक्षा देगी, तो फिर बीमार, बूढ़े, विकलांग या जो किसी वजह से बदकिस्मत हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होगा।
उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा,
आलोचकों का यही कहना था। नारीवादी आलोचकों ने भी ध्यान दिलाया कि उनका सिद्धांत घर के अंदर होने वाले अवैतनिक काम या लैंगिक असमानताओं जैसे मुद्दों पर ज्यादा कुछ नहीं कहता।
यहाँ तक कि कुछ स्वतंत्रतावादियों ने भी उनकी आलोचना की।
हाँ, कुछ जो और भी ज्यादा कट्टर स्वतंत्रतावादी हैं, जिन्हें अराजक पूंजीवादी कहते हैं, वो मानते हैं कि किसी भी तरह का राज्य, चाहे वो न्यूनतम ही क्यों ना हो, गलत है। व्यक्ति को पूरी तरह आजाद होना चाहिए।
और फिर वो विवाद भी है जो उनकी बात की किताब द एग्जामिन्ड लाइफ से जुड़ा, जहां उन्होंने खुद अपने पहले के विचारों को अपर्याप्त कहा।
हाँ, ये दिखाता है कि वो खुद भी अपने विचारों के कुछ नतीजों को लेकर शायद पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे बाद में, या कम से कम उनमें कुछ और जोड़ने की जरूरत महसूस करते थे, जैसे समुदाय का महत्व।
नॉजिक के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें, उनकी शख्सियत, उनकी शैली।
वो अपनी बहुत ही चमकदार, विटी और थोड़ी चंचल बौद्धिक शैली के लिए जाने जाते थे। वो कोई भारी भरकम उबाऊ सिस्टम बनाने में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि पहेलियां पेश करना, चौंकाने वाले विचार उछालना, इसमें उन्हें ज्यादा मजा आता था। और उनकी अपनी जिंदगी का सफर एक किशोर समाजवादी से दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्रतावादी दार्शनिकों में से एक बनना, ये भी अपने आप में कमाल की कहानी है।
और ये कि वो अपनी राय बदलने से झिझकते नहीं थे।
बिल्कुल, ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी का सबूत माना जाता है। वो कहते थे कि दार्शनिक थोड़े जैज संगीतकारों जैसे होते हैं, जो पहले से तय धुन पर ही नहीं चलते बल्कि सुधार करते हैं, मौके पर नए रास्ते तलाशते हैं।
ये बढ़िया उपमा है।
दर्शन के अलावा उन्हें फोटोग्राफी में और होलोकास्ट के अध्ययन में भी काफी दिलचस्पी थी। बाद के सालों में आध्यात्मिकता और जीवन के अर्थ जैसे सवालों में उनकी रुचि बढ़ती हुई दिखी।
और एक और दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्रतावाद पर सबसे प्रभावशाली किताब लिखने के बावजूद वो खुद को कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मानते थे।
हाँ, ये बड़ा विरोधाभासी लगता है। उन्होंने साफ कहा था कि उनके दार्शनिक तर्क जरूरी नहीं कि सीधे सीधे पॉलिसी बना दिए जाएं। उन्होंने मजाक में एक बार खुद को एक ऐसा स्वतंत्रतावादी जो स्वतंत्रतावादी दुनिया में नहीं रहना चाहता, अ लिबर्टेरियन हु डजंट वांट टू लिव इन अ लिबर्टेरियन वर्ल्ड भी कहा था।
इसका क्या मतलब निकाला जाए?
शायद ये कि वो अपने विचारों की तार्किक सीमाओं को समझते थे और साथ ही वास्तविक दुनिया की जटिलताओं को भी। शायद वो जानते थे कि शुद्ध सिद्धांत और जमीनी हकीकत में फासला होता है।
तो अंत में नॉजिक पर इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली मुख्य बात क्या रह जाती है?
मेरे ख्याल में नॉजिक हमें मजबूर करते हैं कि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य या समाज के अधिकार के बीच के रिश्ते पर नए सिरे से और गहराई से सोचें। आप उनके जवाबों से सहमत हों या असहमत, उनके सवाल बहुत तीखे हैं। वो हमें ये पूछने पर मजबूर करते हैं कि एक समाज को व्यक्ति पर कितनी शक्ति रखनी चाहिए, न्याय का असली मतलब क्या सिर्फ नतीजा है या प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
और शायद सबसे बड़ा सवाल जो वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं,
हाँ, वो शायद यही है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य को समुदाय की जरूरतों, आपसी जुड़ाव की भावना और खासकर इतिहास से मिले अन्यायों की जटिल विरासत के साथ कैसे संतुलित करें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है और हर पीढ़ी को शायद इसका जवाब अपने तरीके से खोजना पड़ता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए इकैत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।